असल चीज ये होती है किस तरह से उनके गुणों को प्राप्त करें, तो उन जैसे बन जाए, और यही असल चीज होती है। उसको गुरु अमर कर देगा, फिर इसे कहते हैं गुरु पुष्पलाई होता है। और वो आदमी जो है, देखिए लाला जी महाराज साहब के संत पर में जितने भी लोग आए, महाराज जैसा हमारा ज्ञान है कि 31 लोग, उन 31 लोगों ने 7-8 लोगों ने उनका काम किया। अपनी अपनी उसके हिसाब से उन सबको उनने मर कर दिया। डॉक्टर चतुर्भुज साय जी, उनको गुजरे हुए 50 साल से ज्यादा हो गए, ताऊ जी कि वो लोग थे जिनने एक न एक गुण उनका अपना है, कोई भी गुण था वो अपना नहीं था। उनका काम भी किया, उनके गुणों का काम भी किया। बचे हुओं को किसी को भी नहीं मालूम कौन थे, कहां से आए थे, कहां थे। ये सब वो थे जो कोई दुनिया भी उससे आए, लेकिन न उनने उनका कोई काम किया, न उनके गुणों का गान किया, न उनके गुणों को ग्रहण किया। तो नंबर न 1 में रहे, न 2 में रहे, न 3 में, तो कौन पूछे। बस ये जब किसी ने लिखा तो मालूम हो गया, हाँ साहब ये भी एक जाया करते थे। तो सबसे आइडियल पूजा यही है कि आप किस तरह से अपने गुरु के गुणों को अपनाएं। नंबर 2 ये है कि उनके गुणों का बगैर किसी कपट के दान करें। कपट का मतलब ये मत सोचे कि लोग आपकी पूजा करने लगेंगे, आपका सत्संग होगा, आपकी पूजा। और नहीं तो फिर तीसरे नंबर की है, उनका काम अगर उन्होंने कोई बताया है भंडारे का है, सहायक वही 5 लोग होते हैं, सबसे ज्यादा बाधक की हुई। तुलसीदास जी लिविंग एग्जाम्पल, बीवी बाधक भी थी, बीवी भी सहायक बनी, उनने गुणों का दान किया, और देख लीजिए हमारो किसी का देख लीजिए। भगवान राम के साथ इतने लोग रहे, आम लोग की जमान में तो एक आदमी को लेते ही नहीं, राम लक्ष्मण लेते और हनुमान भाई, अगर सुग्रीव भी थे उनका भी काफी योगदान था। इनको सबको उसी के हिसाब से कायदे से तो जितने उनके साथ थे सबका होना चाहिए, तो वो इन्हीं ने उसी उसके हिसाब से ग्रहण किया। किसी ने किसी चीज को ग्रहण किया, किसी ने किसी चीज को ग्रहण किया। बेसिक लक्ष्य हर उसका ये होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने गुरु की तरफ। नहीं है तो उनके गुणों को गान करें, ताकि अगर हम नहीं बन सकते, हो सकता उनको सुन के कोई और बन जाए। और सबसे वो भी नहीं है तो यही है कि उनका काम जैसे भंडारे में कष्ट चले गए, हो सकता है आज हम नहीं बन पाए, किसी और वक्त वैसे ही बन जाए। और उसकी मिसाल बहुबलवीर साहब जी थे, जिनने लाला जी महाराज शादी के शिष्य थे, उनके पीरियड में थे, भंडारे में आते रहते थे और ओल्ड एज में काफी रहीस थे, बड़े पोस्ट पर भी थे। आखिरी वक्त उनको यही ख्याल आया कि शादी संबंधी में लाला जी महाराज साहब के क्या, तो किसी ना किसी वक्त, हो सकता है उस वक्त आप नहीं, चेतना जागी, कोई गुण आप अपना और उसी में लोगों ने, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और लोगों ने योग लिखे, कुछ लोगों ने अपने गुरु की लाइफ हिस्ट्री लिखी, किसी ने उनके चरित्रों को लिखा, यही गुणगान। जैसे तीन अवस्थाएं शरीर की हैं, मन की हैं, ऐसे ही हर चीज में तीन अवस्थाएं। एक आपने पैसा दान किया इस खाल से कि इसका कुछ भला हो जाए, एक दान किया इस खाल से कि हमारे कष्ट ना हो, एक यह था बेईमानी का पैसा था वो आपने डाल कर, और तीनों का मतलब अलग अलग वो होता है, फल भी अलग अलग प्रकार के। तो हमें सब, क्योंकि हम लोग का वास्ता बाबूजी महाराज साहब से है, कि उन गुणों को अपनाना चाहिए जो उन्होंने। बाबूजी महाराज साहब, गुरुदेव ने वो गुण अपनाए जो लाला जी महाराज साहब ने, उन्हें जो चीज पसंद आती थी वो उन्हें पसंद आने लगी, जिस चीज के वो नहीं चाहते थे उस। लाला जी महाराज साहब ने लिखा हमारे फूफा उन्हीं के शिष्य थे, बड़े फूफा भी छोटे फूफा भी, वो अपने प्रीतम की बुराई सुन ही नहीं सकता, सच्चाई ये है कि हमारी मदर को टीबी हुई थी वो उन्हीं की सेवा की वजह से, जो उस वक्त का काम था सब नंदे करती थी, उनने अपने सब ऑर्नामेंट बेच दिए, तो उन्होंने लाला जी महाराज साहब को एक चिट्ठी लिखी कि डॉक्टर श्यामलाल से कह दीजिए कुछ रुपया हम उधार देते, आपको बड़ा नागवार गुजरा, वो कौन ही के शिष्य थे। उनने उनसे यही कहा कि देखो बेटी, उस गरीब ने सब जेवर बेच दिए बगैर पूछे, उसकी तुमने जान ले ली, और क्या चाहिए तुझे? क्योंकि वो जिससे प्रेम करता है पर उसकी बुराई नहीं सुन सकता। तो हमेशा ये कोशिश करिए कि पहले अपने गुरु के गुणों को अपनाते चले जाइए। इनमें कौन से गुण थे? वो भी तीन तरह के होते हैं, एक दुनियावी गुण होते हैं, एक व्यवहारिक गुण होते हैं, एक परमार्थिक गुण होते हैं। आइडियल ये है कि परमार्थिक गुणों को अपनाना चाहिए। व्यवहारिक गुण सबसे निचले किस्म के हैं, ऐसे दुनिया को बरता अपने जीवन का। परमार्थिक गुण ये है कि वैसे किस तरह से वो इस रास्ते पर चल के अपने मन से वो हिंट दे देते थे। गुरुदेव ने भी देखा, हमने 12 बजे उठ के बैठ जाते थे, एक हिंट था, नहीं बेटे रात का भी टाइम बड़ा अच्छा होता है, फिर हर वक्त साल में रहो। बाबू जी को देखा 3 बजे, तो वो अपने अपने समय के हिसाब से। आइडियल यही है कि किस तरह से पहले हम अपने गुरु के गुणों को अपनाएं, फिर और संतों के गुणों को भी अपनाएं, और अल्टीमेटली ईश्वरीय सभी गुणों को अपना दें। पहले पानी नदी में मिलता है, वही नदी किसी बड़ी नदी के साथ जाके समुद्र में हो जाती है, फिर इसके और उसके पानी में कोई फर्क नहीं। कि किस तरह से वो लोग दुनिया के काम करते थे, किस तरह से उनने दुनिया बरती, किस तरह से लोगों से व्यवहार करते थे, इसमें मेन हमारा ये है कि उनका परमार्थी जीवन कैसा था और वो कौन से गुण थे जिससे चलकर वो इस रास्ते पर। भाजी को भी तकलीफ थी, 81 बार फ्रैक्चर के बाद थी, लेकिन कभी उनने भंडारा के पीरियड में ऐसा नहीं हुआ और ना आए। जब तक बिल्कुल वो ना हो गए, बराबर अपने गुरु के दरवाजे पर बैठे। जब भी कोई आता था तो बराबर उसको पूजा संबंधित बातें बराबर क्या था, परमार्थ में अपने शरीर का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये शरीर उस ईश्वर का दिया हुआ है, उसी को अर्पण कर दें, इससे जितना ज्यादा से ज्यादा काम उसका हो सके, उसका काम, दुनिया काम नहीं, उसको लेते रहिए। तो एक दिन ये उसी में समझ आए, आप दुनिया काम लेंगे दुनिया में समाएगा, आप हल्के काम लेंगे जानवरों में समाएगा। इसको समाना तो है ही किसी न किसी ने। तो इनको, ऐसे सत्संगी भाइयों को ये कहना नहीं पड़ता कि हमने सावित्री भंडार अटेंड की, हमने 30 सौगत उठाई है। एक शख्स कॉलेज में तो एडमिशन ले लिया, जाता भी है लेकिन बगैर पढ़े हुए वापस आ जाता है, क्लास में अटेंटिव नहीं रहता, कैसे पास हो सकता है। बिल्कुल दुनिया और परमार्थ एक सी चीज है। एक ने क्लास में भी अटेंटिव रहा, खुद की भी पढ़ाई की और ये डिटरमिनेट कर लिया कि हमें फर्स्ट आना है। ज्यादातर फर्स्ट ही आता है, नहीं तो सेकंड अवश्य आता, फेल नहीं होता, थर्ड नहीं आता। और यही तड़प और डिटर्मिनेशन होता है कि हमारी तड़प कैसी है, हमारी डिटर्मिनेशन कैसी है। हमारे गुरुदेव ने यही कहा बेटे, हमेशा फर्स्ट के बारे में सोचा करो, सेकंड के बारे में जो भी काम करो उसमें ये देखो तुम पहले कैसे कर सकते हो। और उन्हीं का आशीर्वाद था कि दुनिया की कार में भी सबसे पहले हमने कार खरीदी, सबसे पहले मकान बनवाया। कोई काम ऐसा नहीं था जो कि उसमें कि उनका हमेशा ये था कि ना हमेशा ये देखो कि किस तरह से सबसे पहले तुम कर सकते और फिर उसमें जाल लगा दो जब तक वो कंप्लीट हो। कंप्लीट होने के बाद उस चीज का फिर ख्याल तक ना रहे। क्योंकि हम और सब फौजी से वास्ता रखते हैं, हमें ये देखना चाहिए उनमें कौन से गुण थे, परमार्थी को उनको अपनाना चाहिए। दुनिया का व्यवहार कैसा था, जो चीज समझ में ना आए हमेशा पूछ लेनी चाहिए। जब ये लोग आते थे तो पैसा खर्च करके आते थे, दूसरा ये था एवरेज लोग आते थे तो आप पूछते थे, घुसते ही यहां तक बाबू जी आपका प्रोग्राम क्या है। अगर उसने कहा तो बाबू जी आए थे यहाँ दिल्ली में, हमारा काम था ये, तो मैं अच्छा अच्छा फिर हाथ मुंह धोइए, किसी बच्चे से कह जाओ बेटे उनको चाहो, वो निकल के नहीं आते। हम लोग को बड़ा बुरा लगता था क्योंकि तो दुनियादारी के हिसाब से देखते थे कि ये तो बेचारा इतनी दूर से आया और इन्हें इतना भी कष्ट नहीं किया। जब किसी ने कहा नहीं बाबू जी आए थे दो तीन दिन आपके पास, अरे उन्हें कपड़े पड़े, फिर नहा धो लो और फिर बैठा जाए, उसके लिए चाहे उनको कितना ही शारीरिक कष्ट था। एक बार तक हम लोगों ने पूछा, तुमने बेटा जो दुनिया लिए हुए आता है तो उसमें क्या ईश्वर के नाम की गुंजाइश है, उसके ख्याल की धार अपने काम पर रहेगी, इसके व्यर्थ तुम्हें मेहनत करना होगा। तो अब वो भी करते रहते हैं, बीच बीच में उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आने वाले समय में से सब जो आता ही ईश्वर के नाम से है उसके साथ मेहनत करते हैं। तो इसमें कम मेहनत भी पड़ती है और उसका ज्यादा भला भी होता है। ये दुनिया का व्यवहार था, मैसेज ये था तो उसका हित हो जाए, हमारा समय का नष्ट ना। उसी तरह बनते चले जाएंगे और कोई वजह नहीं कि एक जीवन में आदमी अपने गुरु की जड़ न पड़े। देखिए हम में क्या कमी थी, हम क्या रह गया, और व्हाट मोर आई कैन डू, ये मत देखिए कि हम पूर्ण हो गए। कोई आदमी सिवाय ईश्वर के पूर्ण न था, न है, न हो पाए। खाली एक मालिक है जो हर तरह से। हाँ, गूंज समुद्र में पैदा के मिलने के बाद उससे अलग नहीं होती। इसी तरह चाहे आप अच्छे हो, गुरु हो, एक पड़कर मालिक से मिल लिए तो आप अलग नहीं। उससे पहले आपको किसी छोटे दरिया में मिलना पड़ेगा। वही गुरु रूपी दरिया होता है जिससे मिलकर मालिक तक पहुंच जाता है, और यही जीवन का रहस्य है। फिर किसी को देखते चले जाएंगे। कि हर शख्स ने यही सब किया, दुनिया की दिक्कतें भी रहेंगी, बाधाएं रहेंगी। एक सेंटेंस में बाबू जी कहा करते थे, बेटे ईश्वर कोई अलग से तुम्हारे लिए दुनिया नहीं बनाए, ये सब दिक्कतें भी रहेंगी, बाधाएं रहेंगी, इन्हीं पर दाएं बाएं करके अपना काम बनाते चले। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई ये कहेगा दुनिया भी दिक्कतें नहीं होंगी, तो ऐसा युग न कभी था, न है, न आएगा। इसी में से हमें समय देंगे, और इसीलिए परमात्मा सबसे बड़ा ये है मन का दान। मन का दान ये है, वो करते चले जाए जो गुरु करता है। दूसरे समय का दान, जितना ज्यादा समय देंगे उतना ही आपका मन जो है ईश्वर की तरफ जाता रहेगा, और जब परमार्थ की तरफ रहेगा तो उसका पल्ला भारी होता चला जाएगा और दुनिया अपने आप छूटती चली। दुनिया की तरफ रहेंगे, दुनिया का पल्ला भारी होगा, परमार्थ का पल्ला हो ही नहीं सकता। यही एक रास्ता है जिस पे चल के सभी लोगों ने अपने जीवन को सफल किया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो हमें भी यही आइडिया चुनना चाहिए कि किस तरह से हम अपने प्रेजेंट समय को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते, और उन गुणों को अपनाते चले जाएं जो हमारे गुरुदेव। ये एक दिन का सौदा नहीं है, जीवन भर का सौदा है। एक से एक अलग चीज समझ में आती है, हिसाब तब आदमी रिलाइज करता है, तभी गुरु की महिमा समझ। उससे पहले हर शख्स उसको ऑर्डिनरी आदमी समझता है, वह समझता है कि हमसे थोड़े एज में बड़े हैं, सुपीरियर हैं, उससे पहले गुरु की महिमा नहीं। हम लोग भी ताऊ जी को हमेशा एक था, उनसे बहुत प्रेम था, आज बाकी हमेशा ऑर्डिनरी मनुष्य ही समझते। लेकिन अब बराबर रिलाइज करते हैं, धीरे धीरे पहले किया कि वो एक ऐसी महान आत्मा थी जिनके जुम्मे ईश्वर ने अपना काम दिया था, लाला जी महाराज साहब का काम दिया था कि वो लोगों को इस रास्ते पर डाल। तो धीरे धीरे सब चीजें समझ में आती है, फिर आप अपने उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। और यही असल चीज है, ये असल चीज नहीं है हम और आप आए, थोड़ा देर मन लग गया, ये मन का मुकाम, इस मन के बुद्धि के मुकाम से ऊपर आना है कि किस तरह से इससे ऊपर आना। कोशिश यही करिए कि किस तरह से अपने डॉक्टर चतुर्वत साय जी ने एक स्थूल का सबसे बड़ा गुण अपनाया कि अपनी शक्ल भी वैसी कर ली जैसे डॉक्टर साहब किताबें छपा के लालजी महाराज साहब का प्रचार कर। तो जब तक गुणों को नहीं अपनाएंगे ठाकुर साहब ने एक गुण अपनाया उन्हें कैश कौन से प्रेम हो गया कैशों में भी जो सक्सेना थी उनको ज्यादा और जितना राजस्थान में प्रभु है पुलिस डिपार्टमेंट का उसका बेसिक रहे ऑनेस्टी। और देखिए कितने साल गुजरे हो गए इनके लड़के ना संस्था से जुड़े किसी से कोई पूछता नहीं और ठाकुर साहब की याद आज भी सब। तो कोई गुण आप अपना लें जब भी गुण अपनाएंगे तब नंबर दूसरे की है उसके गुणों का गान करना। ऐसे ही तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबसे अच्छी पूजा ये है कि संतों का संग संग से आपको याद आती रहेगी। दूसरे उनके गुणों को गान करना तो जब आप उनके गुणों को लिखते हैं तो उन्हीं का तो ख्याल रहता है उन्हीं के बारे में। भंडारे अटेंड करना सत्संग अटेंड करना इसलिए खाली कि आपको ख्याल बराबर बना रहे याद बराबर बनी रहे और आना जाना रहेगा तो ये धीरे धीरे परपन तो होगा लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य नहीं है लक्ष्य ही है। और उसमें ये देखिए अट्ठावन में हम समाधि पे गए एक तो पहली मर्त गए फिर गुरुदेव के कहने से गए और वहां एक बड़े पुराने सत्संगी थे जो उनसे दीक्षित भी थे तो मन में एकदम से ख्याल आया चलो उनके यहाँ रुकेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। उसको विचार को उनने रिसीव किया बोले बेटे नन्ने ऐसा करना के स्टेशन ही पर नहा धो के 4 बजे से पहले समाधि पहुंच जाना। 4 बजे इसलिए कहा तो उस वक्त ये थाने के आगे कहीं आदमी ना आदम जात का निशान और उसके बाद तुम इनके यहां चले जाना। लेकिन उससे पहले वहां से लाला जी महाराज साहब के घर भी 2 मिनट हो लेना फिर आना। जब लौट के गए तो उनको बताया था जी वहां गए थे लाला जी महाराज साहब के यहाँ गए थे वो मिली थी। हम बताओ जी एक बात बताइए ये तो इतने पुराने सत्संगी हैं आपसे दीक्षित भी हैं उनके ही अब क्यों जाने से मना कर उनके बेटे उन्हें इतनी फुर्सत नहीं वही रहते हुए कि हमारे गुरुदेव के यहाँ साल में एक मर्तबा तो ऐसे शख्स क्या भला उनके ख्याल और उनके यहाँ खाना खाने का कहीं ऐसा ना होते कि तुम भी हमारे गुरुदेव के यहाँ न जाओ तो गए दुनिया ही काम से दुनियादार की निगाह में ही होता था और जब आदमी है उन्हीं के सत्संगी और उनके गुरु हर वक्त आपको बचाता रहता है कि आप इस रास्ते से कहीं बेराह ना हो। और यही गुरु का, माने न माने ये हमारे हाथ में, जो मानते हैं उनको डेफिनेटली सक्सेस होती है, जो नहीं मानते उनका ईश्वर जाने। कोशिश यही करिए, किताबों को बार बार पढ़िए और इनको समझने की कोशिश करिए, आप देखेंगे कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि इन पर बाबू जी ने छोड़ी हो, जिसके बारे में एहतियात होना।